તારીખ 27/9/1998 શ્રી મદ્રાસચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 724
સુમતીભાઈ કા પ્રશ્ન યથાર્થ ભાવના વાલા જીવ તથા પરિભ્રમણ કી વેદના વાલા જીવ અંતર્ભેદ જાગૃતિ મે આયા तो उसे अवश्य मोक्ष होगा, ऐसा नियम हो गया। ठीक बात है, ऐसा मोक्ष का निश्चय कारण तो सम्यक दर्शन है। आगम प्रसिद्ध बात तो उतनी ही, और परिभ्रमण की वेदना में या यथार्थ भावना में कोई जीव आता है, फिर परिणाम कभी बदल भी जाता है। सम्यक दर्शन होने से एक ऐसी योग्यता बन जाती है कि फिर सम्यक दर्शन में वो चला जाए तो फिर सम्यक दर्शन में आ जाता है, ऐसी बात बनती है। बात तो अपने ऊपर लेनी चाहिए। जब भी कोई बात का पर हमको विचार करना है तो अपने आप को मुख्य रख करके विचार करना चाहिए। दूसरे जीव को क्या होगा या क्या नहीं होगा, उससे कोई अपने को तो फायदा नहीं है। न ये विचार पद्धति ठीक भी है। मैं यथार्थ भावना में आया, मुझे परिभ्रमण के दुखों की वेदना हुई, तो मेरी योग्यता कैसे हुई? ये एक अनुभव करने लायक चीज है। फिर अपने आप को देखना है। यहाँ जो 569 पत्र में कृपालु देव ने जो बात लिया है, उसमें तो दो बात है। एक तो आत्म शांति चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट हमको आत्म शांति चाहिए। हम ये अशांति अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी एक योग्यता होती है। उस योग्यता के काल में आत्म शांति प्राप्त हो जाए ऐसा रास्ता बताने वाला कोई अनुभवी पुरुष ज्ञानी मिल जाता है। वो दो बात साथ में बनती है तब उस जीव का आत्मकल्याण अवश्य हो जाएगा, वो मोक्ष से समीप हो जाएगा, समीप हो गया ऐसा कहने में आता है। क्यों? कि उस जीव को आत्म जागृति बहुत आती है। इतनी आत्म जागृति आती है कि खुद को ही ऐसा लगता है कि तुम्हें अपूर्व जागृति आई है। भूतकाल के अनंत काल में ऐसी आत्म जागृति शायद मुझे आई नहीं होगी, ऐसा वो फील करता है। और गुरुदेव की भाषा में कहे तो मोक्ष के भणकार, भनकार को हिंदी में क्या कहते हैं? भनक, भनक कहते हैं। आवाज, अंत भीतर की जो आवाज होती है ना, आत्मा की आवाज होती है, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पनकारी बोलते हैं, भीतर में से मोक्ष के भंकार आ जाते हैं, ऐसे मुमुक्षु की भूमिका में बनता है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, वो बात श्रीमद् जी ने अपने अनुभव से की है। शास्त्रों में मुमुक्षु की भूमिका की बात ही बहुत कम आई है, क्योंकि पिछले 600-700 साल में कोई भावलिंगी दिगंबर मुनि नहीं हुए। 250 साल पहले, 200 साल पहले टोडरमल जी साहब जयपुर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हैं, उसमें लिखे हैं कि पिछले करीब 500 साल में भावलिंगी दिगंबर सच्चे मुनि हमारे संप्रदाय में देखने में नहीं आए। 200 साल और बीत गए तो 700 साल हो गए। तो हमारे पास जो मुनियों के लिखित शास्त्र है वो 700-800 साल पहले के ही सब मौजूद है। कोई 1000 साल पहले के, कोई 1100-1200-1400-1500-2000 साल पहले के शास्त्र मिलते थे। बहुभाग ज्ञान दशा पर सब बातें लिखी गई है। ज्ञान दशा का ही उपदेश दिया है, मुमुक्षु दशा का उपदेश देने की शायद आवश्यकता ही नहीं लगी है। 700-800 साल पहले मुमुक्षु की भूमिका का उपदेश देने की शायद जरूरत नहीं लगी। तो शास्त्र रचना या उपदेश वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही वो उपदेश चलता है। समाज की वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही उपदेश चलता है। ऐसा ही एक कुदरती भाव आता है ज्ञानियों को, मुनियों को। तो आप देख लीजिए, शास्त्र जो विद्यमान शास्त्र है उसमें मुमुक्षु की भूमिका की चर्चा उतनी नहीं हुई है। श्रीमद् जी 100 साल पहले हुए तो उन्होंने ये मुमुक्षु परिचय में आए, उनकी योग्यता को अयोग्यता को समझे और उसी के अनुसार उपदेश दिया। ये बात यहाँ लिखी गई है, उनका अच्छा से अच्छा फायदा कोई है तो वो है कि अगर हम आत्मकल्याण की या आत्मशांति की भावना में आए और हमें आत्मजागृति आ गई तो इतनी बात में हमको मोक्ष की समीपता होती है, तो ये कितनी अच्छी उपलब्धि है और हमारा उमंग बढ़ाने की बात है, हमारा उल्लास को बढ़ाने की बात है कि इतनी नीचे भूमिका वाले मुमुक्षु को भी इतना रिस्पांस दिया है, करे तेरा मोक्ष समीप है, तुमको आत्मकल्याण की भावना आत्मा में से आई क्या, और तुमको ज्ञानी पुरुष के प्रति, आत्मकल्याण के प्रति विश्वास आया क्या कि मेरे आत्मकल्याण की बात सही रास्ता बता रहे हैं। और दो बात से एक अपने में जो नई चीज पैदा होती है वो अंतर्भेद जागृति की होती है। अंतर भेदा जाता है, मर्म स्थल को स्पर्श हो जाती है बात। क्या कहा स्पर्श होती है? मर्म स्थल को स्पर्श हो जाती है और एक नई जागृति पैदा होती है कि अब मैं मेरे अशांति के कारण जो परिणाम है उस दिशा में मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मेरी आत्मशांति प्राप्त होवे उसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है और इसके लिए मुझे सावधान रहना है, जागृत रहना है। ऐसी एक जागृति आ जाती है और भीतर में से मेरा मोक्ष हो जाएगा। अभी अब मैं परिभ्रमण करने वाला नहीं हूँ, अब मैं संसार में दुखी होने वाला नहीं रहूँगा, अवश्य मेरा छुटकारा हो ही जाएगा, ऐसा एक अंदर से भनकार आता है। ऐसी योग्यता में ऐसा भनकार आता है और वो सही आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ को या उसको परमात्मा की आवाज़ को, एक ही बात है। इसलिए कहते हैं कि इसका मोक्ष समीप है, दूर नहीं है। मोक्ष किसका दूर है कि जिसको विभाव परिणामों में, विकारी परिणामों में, जिसको तीव्र रस आता है, बहुत रस आता है, उसको मोक्ष ज़्यादा दूर है। वो बात लिया है कि अन्य परिणामों में, अन्य परिणाम में जितनी तादात्म वृत्ति, वृत्ति मैंने रस की वृत्ति, उतना जीव से मोक्ष बहुत दूर है, दूर ज़्यादा है। यदि कोई आत्मयोग बने, आत्मयोग ऊपर वाला तथारूप योग कहा ने, वो आत्म तथारूप योग मैंने आत्मयोग, आत्मयोग मैंने आत्म कल्याण कराने वाला योग। बने ऐसा योग बने तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा मूल्य है कि इसका मूल्यांकन किसी टर्म में नहीं कर सकते। ऐसे कोई टर्म नहीं है कि जिसमें इसका मूल्य किया जाए। प्रायः मनुष्य देह के बिना, बाप प्रायः मैंने बहुभाग, मनुष्य देह के बिना आत्मयोग नहीं बनता। न जीव को भावना होती है, न ज्ञानी पुरुष का योग बैठता है, संयोग बैठता है, ऐसा जानकर और अत्यंत निश्चय करके, बलवान निश्चय करके, इसी देह में मैंने आयुष पूर्ण होवे उसके पहले आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है। यानी अपने भावना में आना जरूरी है और कोई सत्पुरुष के समीप रहना जरूरी है, जिससे हमारा आत्मकल्याण की व्यवस्था बराबर बैठ जाए और उनकी हमारी जागृति भी बराबर आ जाए। यहाँ तक कल चला था स्वाध्याय। अब आगे विचार की निर्मलता से यदि यह जीव अन्य परिणाम से पीछे हटे तो सहज में अभी ही उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए। बात क्या ना कि आत्मयोग प्रकट करना चाहिए अत्यंत निश्चय करके। कैसा निश्चय? आत्मयोग प्रकट करना ही है ऐसा निश्चय करके आत्मयोग उत्पन्न करना चाहिए। तो कैसे उत्पन्न होता है? सहज ही उत्पन्न हो जाता है। कैसे सहज उत्पन्न होता है? विचार की निर्मलता से। विचार की निर्मलता मैंने क्या? प्रामाणिकता से, ईमानदारी से। ईमानदारी वो कि मुझे आत्मकल्याण वाकई ही करना है, ईमानदारी से करना है। इसके पीछे दूसरी कोई बात मेरी है ही नहीं, सिर्फ मुझे आत्मकल्याण कर लेना ही है। जिसको ऐसा निश्चय दृढ़ता से होता है उसी को आत्मकल्याण का कार्य टॉप प्रायोरिटी में आ जाता है। संसार में भी जिस कार्य का महत्व मालूम पड़ता है कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसको टॉप प्रायोरिटी दे जाती है। दूसरे दूसरे काम को साइड में रखा जाता है और टॉप प्रायोरिटी में महत्वपूर्ण कार्य को किया जाता है। तो जब जिसको आत्मकल्याण, मैंने आत्म शांति हमेश के लिए चाहिए, इतनी बड़ी महान उपलब्धि, जिसको करनी है उसको इसके लिए उसका महत्व समझ करके उसकी टॉप प्रायोरिटी आई जाती है। इस विषय में, प्रायोरिटी के विषय में अगर सोचा जाए तो यहाँ दो ही प्रायोरिटी है, एक टॉप प्रायोरिटी, एक लास्ट प्रायोरिटी। जब हमको संसार के कार्य टॉप प्रायोरिटी में है तो हमारा आत्म कल्याण और आत्म शांति का कार्य हमारे लास्ट प्रायोरिटी में है। अगर हमको हमारा आत्महित आत्म शांति टॉप प्रायोरिटी में है तो संसार के कार्य लास्ट प्रायोरिटी में ऑटोमेटिकली आई जाएंगे। हमारी आवश्यकता, हमारी रुचि में ये बात पोसाती है या नहीं पोसाती है वो हमें समझना चाहिए, वो हमें देख लेना चाहिए कि हमको पोसा संसार लास्ट प्रायोरिटी, मोक्ष टॉप प्रायोरिटी, ये बात क्या हमको आवश्यक लगती है या क्या हमें उसको ज़रूरत लगती है, हमारी रुचि में वो बात पोसाती है, वो बात हमें अपने आप में बराबर तलाश करके जांच करके समझ लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अनादि से संसार टॉप प्रायोरिटी में है ही, और हम चाहे मंदिर जाएं, चाहे हम शास्त्र पढ़े, चाहे हम दान दे दें, चाहे हम उपवास कर ले, ये सब लास्ट प्रायोरिटी में ही चलता है, टॉप प्रायोरिटी में नहीं चलता है। अपने आप को जांच कर तलाश करके अपनी बात समझ लेना है। ये बताने के लिए विचार की निर्मलता ऐसा लिया, निर्मल मैंने, निर्मलता मैंने शुद्धता, विचार मैंने अभिप्राय, यहां इरादा। शुद्ध हेतु से, शुद्ध अभिप्राय से, प्योर इंटेंशन जिसको कहते हैं, क्या प्योर इंटेंशन, हमारा इरादा साफ साफ होना चाहिए कि हमें आत्म शांति चाहिए ही चाहिए, तो जीव अन्य परिचय मैंने अन्य भावों में से निरस हो जाता है, पीछे हट जाता है। पीछे हटता मतलब क्या है, निरस हो जाता है। पहले रस से आगे बढ़ता था, अभी निरस हो जाता है, पीछे हट करता है, और पीछे हट होता है तो सहज में अभी ही उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए। बहुत अच्छी बात लिया है कि आत्मकल्याण की भावना एक अभिप्राय को लेकर के होती है, और वो अभिप्राय शुद्ध अभिप्राय होता है, शुद्ध अंतकरण वाला होता है। शुद्ध अंतकरण को, शुद्ध अभिप्राय को हो, विचार की निर्मलता को हो, एक ही बात है। ऊपर ऊपर से हमें आत्मकल्याण करना है और भीतर में हमको सांसारिक प्रसंग और सांसारिक चीजें अच्छी लगती है, तो हमारा अभिप्राय साफ है कि नहीं वो हमको देखना है। यहाँ तो शुद्ध अंतकरण वाले का निरसपना ऐसा होता है कि उसको आत्मकल्याण की भावना और सत्पुरुष का योग और अंतर्भेद जागृति, ऐसा जो एक आत्मयोग है, वो सहज मात्र में उत्पन्न हो जाता है और उसका मोक्ष समीप है। असत संग और असत प्रसंग, असत संग और असत प्रसंग का घेराव विशेष है। असत्संग, सत्संग के अलावा जितना भी संग होता है वो असत्संग है। चाहे हम घर में हैं हमारे परिवार के साथ, चाहे हम बाजार में हैं हमारे बिजनेस सर्कल में हैं, चाहे हम समाज की मीटिंग में हैं या कहीं भी सोशल फंक्शन में हैं। सत्संग नहीं है वहाँ, असत्संग ही असत्संग है। और देखिए कि इसका घेराव है कि नहीं है, कि बहुत है, विशेष है, मैंने बहुत है, और इसके प्रसंग भी बहुत है। सत्संग तो 24 घंटा में अधिक से अधिक एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, बाकी 22 घंटे में वही चलता है। तो टाइम फैक्टर के हिसाब से देखें तो सत्संग का समय बहुत कम है और असत्संग का समय बहुत ज़्यादा है। फिर क्या करें, ये तो अनिवार्य परिस्थिति है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कोई बात नहीं। सत्संग में बहुत रस आना चाहिए और बाकी के 22 घंटे में निरसता आ जानी चाहिए, फिर कोई आपत्ति नहीं है, फिर कोई विपत्ति नहीं है। हम रस लेते हैं, यही हमारी गलती है। सांसारिक प्रसंगों में रस आना, ये अशांत रस को बढ़ावा देना है, अशांति को बढ़ावा देना है, टेंशन को खड़ा करने की बात है। अगर शांति को अमृत की उपमा दी जाए तो अशांति को जहर की उपमा देनी चाहिए। अब देखिए, हमको अमृत पीना है या हमें जहर पीना है, पसंदगी अपनी अपनी है। जितना भी अन्य परिचय है वो अन्य परिणाम में, अन्य प्रसंग में रस लेने की बात है और वही अशांति का कारण है। कहते हैं कि विचार की निर्मलता से अगर जीव अन्य परिचय में अन्य रस से पीछे हटता है तो आत्मकल्याणकारी प्रसंग बनता है, परंतु असत्संग और प्रसंग का घिराव विशेष है और यह जीव मैंने, हमारा जीव, उससे अनादि काल का हीन सत्व हुआ होने से उससे अवकाश प्राप्त करने के लिए अथवा उसकी निवृत्ति मैंने नाश करने के लिए यथा संभव मैंने हो सके उतना, पॉसिबल है उतना सत्संग का आश्रय करें तो किसी तरह पुरुषार्थ के योग्य होकर विचार दशा को प्राप्त करें। क्या कहते हैं कि असत्संग का घिराव विशेष है और हमारा जीव को अनादि काल से ऐसा ही संस्कार है, ऐसे ही परिणाम की असर है, संस्कार मैंने वैसे ही परिणाम की असर है, और इस कारण से हीन सत्व मैंने निर्बल हो गया है, हीन सत्व, सत्व मैंने ताकत, ताकत हीन हो गई है, मैंने बहुत कमजोर हो गया है, किसके लिए, आत्मा आत्मिक पुरुषार्थ करने के लिए कमजोरी आ गई है। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ऐसा हो जाता है, क्यों कि आगे बढ़ नहीं सकता, तो ये कमजोरी इतनी आ गई है। जैसे कोई ज्यादा बीमार रहता है तो शरीर की कमजोरी बढ़ जाती है, वैसे बहुत काल तक उल्टे परिणाम किए, अशांति के परिणाम किए, मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है। मानसिक कमजोरी बढ़ते हुए धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के भय समेत मिथ्या मान्यता हो जाती है, कैसे कैसे होती है कि जैसे हम उस देव को मानेंगे तो हमको मदद मिलेगी, उस देवी को मानेंगे तो मदद मिलेगी, ऐसे अनेक प्रकार के, अगर हम नहीं मानेंगे तो वो कोपायमान होकर के हमको परेशान करेंगे। ये जो अभी तो ये पूजा के नवरात्र के दिन चलते हैं ना, वही मान्यता में चलते हैं कि उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो देवी कोपायमान हो जाएगी और अपने को परेशान करेगी। ये सब मानसिक कमजोरी में से ये सब बातें पैदा हो जाती हैं। कोई गणपति को मानने लग जाते हैं, कोई अनेक प्रकार के देव देवियों को मानने को लग जाते हैं। हमारे जैन शास्त्र में वीतराग देव तीर्थंकर जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा दूसरे देव को कुदेव बोले हैं। क्या बोले हैं? कुदेव बोले हैं। और उनका उनको नहीं मानना चाहिए ऐसी स्पष्ट आज्ञा दी है। लेकिन जब संयोग में से सुख लेने की बुद्धि है, अभिप्राय है, और उस अभिप्राय से कमजोरी आ जाती है, तब धर्म के क्षेत्र में भी कुदेव को मानने की परिस्थिति पैदा हो जाती है। और आज जैन संप्रदाय में भी सर्वज्ञ देव को गौण करके कुदेव की मान्यता बढ़ती जा रही है, वो प्रत्यक्ष देखने में आता है। हाँ, ये प्रसाद का उल्टा परिणाम हो गया, भय भय हो गया ना, डरपोक हो गया जीव, क्या हो गया? डरपोक हो गया। उसको मानेंगे तो मदद मिलेगी, नहीं मानेंगे तो अपने को परेशान कर देंगे। उनको मानना मान ले तो उसमें अपने को क्या नुकसान है, उसको भी मानो, उसको भी मानो, उसको भी मानो, ये बात हो जाएगी। तो ये कहाँ से बात पैदा हुई? संयोग में सुख बुद्धि के कारण से उत्पन्न हुई कमजोरी में से ये बात उत्पन्न हुई। ये ज्योतिष में भी वो पत्थर बत्थर पहनाते ना, नंग नंग अंगूठे में पहनाते ना, कोई पीला, कोई नीला, कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई वैसे, कोई शनि का, कोई गुरु का, कोई मंगल का, ऐसे ऐसे, ये सब बात कमजोरी में से पैदा हुई है, मानसिक कमजोरी है ये। इससे कोई लाभ होता नहीं, न हो सकता है। क्यों? कि जो भी प्रारब्ध है वो तो हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है, उसमें फेरफार करने का इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं। ये कानून है, वितरागी कानून है, ये वस्तु का स्वरूप है। आप गेहूं का दाना बोओगे, ऊपर गेहूं की डूंडी मिलेगी, चावल बोओगे चावल मिलेगा, कुदरत का नियम है वो तो, आपने जैसा बोया वैसा पाओगे, दूसरा मिलना असंभव है, बन ही नहीं सकता। चावल और ज्वार बगल बगल में बोते हैं, बगल बगल में वही ऊपर आता है, पानी, खाद, प्रकाश, सब वो की वो चीज़ मिलती है, जमीन वो की वो है, लेकिन जो बीज है वही मिलेगा चीज। ऐसे जैसे हमने किया जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात होती है। हाँ, हम खाएं तो प्याज, इसलिए ये मिथ्या मान्यता से हमको और कमजोर नहीं होना चाहिए, इससे कमजोरी और बढ़ती है, इससे कमजोरी और बढ़ती है। बस एक वितराग देव, निग्रंथ गुरु और इनके कहा हुआ उपदेश रूप शास्त्र, तीनों का स्वीकार करें, दूसरों का स्वीकार नहीं करें, ये जरूरी है। और इसके लिए ना हिम्मत होने की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ने की बात है। और यथार्थ वस्तु स्वरूप समझेंगे तो यो ताकत आ ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ताकत सहज मात्र में आ सकती है। क्या कहते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, उससे अवकाश प्राप्त करने के लिए, एक कमजोरी में अवकाश लाना मैंने बलवान होना, या उसकी निवृत्ति मैंने कमजोरी का नाश करने के लिए, कौन सा साधन है? सत्संग एकमात्र साधन है। ये बल सत्संग से मिल सकता है, यथार्थ सत्संग में ये विचारधारा होती है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है और हमारा विश्वास जमता है और हमको ताकत परिणाम में आती है कि अभी कोई हमको भयवान होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यथासंभव सत्संग का आश्रय करे, आश्रय करे मैंने सिर्फ सुन ले ऐसी बात नहीं है, सत्संग में जो भी बात हमें लागू हो उसी का प्रयोग करें, इसको कहते हैं सत्संग का आश्रय। तो किसी तरह मैंने तो अवश्य किसी तरह मैंने अवश्य पुरुषार्थ योग्य हो जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, हमारी ताकत उजागर हो जाएगी जो भीतर में भरी हुई है, और विचार दशा की प्राप्ति हो जाएगी। विचार दशा मैंने आत्म कल्याण के विचार बलवान हो ही जाएंगे, आत्म शांति के विचार बलवान, दृढ़ विचार हो ही जाएंगे। इसके लिए क्या क्या वैचारिक भूमिका में सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता, असारता अत्यंत रूप से भाषित हो, उस प्रकार से आत्मविचार उत्पन्न होता है। विचार दशा मैंने आत्म कल्याण का विचार, आत्म शांति का विचार, वो उसको आत्मविचार कहते हैं। वो कैसे उत्पन्न होता है? संसार की अनित्यता, संसार के सभी प्रसंग सभी संयोग अनित्य है, नित्य मैंने हमेशा हमेशा साथ में रहने वाला नहीं है। देखिए हम कभी किसी होटल में ठहरते हैं, जाते हैं ना होटल, फाइव स्टार थ्री स्टार कोई भी होटल होती है, हमारे फ्लैट से हमारे मकान से अच्छी सजावट वाले होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, फर्स्ट क्लास टिप टॉप फर्नीचर होता है, सब प्रकार की सुविधा होती है, हमको रस आता है क्या इसमें? ये हमारी चीज है, कोई चीज इसमें खराब होती है तो हमको दुख होता है क्या? हम रिपेयरिंग करने लगते हैं क्या? कोई बात खराब हुई तो हम उसमें रिपेयरिंग के में जाएंगे क्या? क्यों? हमारी नहीं है, हम तो कुछ दिन के लिए ठहरे हुए हैं, पराई चीज है, किराया दे करके कुछ दिन के लिए ठहरे हुए, बिगड़े तो भी उसका, नहीं बिगड़े तो भी उसका, तो परायापन में रस नहीं होता है, कितनी भी चीज अच्छी हो। हम रास्ते पे कोई बड़ी कीमती गाड़ी को देखते हैं, मर्सिडीज और दूसरी भी आती है ना, क्या क्या नाम है मालूम है, हैं रोल्स रॉय, अपनी नहीं है तो रस नहीं आता है, और अपनी मारुति 800 है तो उसकी सावधानी रहेगी, तो भी उसका एक्सीडेंट नहीं हो, उसका कलर खराब नहीं हो, उसको हाँ स्क्रैच मैंने कलर खराब नहीं हो, क्यों? अपनी है, अपनत्व जहाँ होता है वहाँ रस आता है। अपनत्व क्यों होता है? नित्यता स्थापित होती है तो, कि ये चीज हमारे पास हमेशा रहने वाली है, मान लेते हैं हम, रोग आता है तो घबरा क्यों जाते हैं कि जैसे हमेशा हम रोगिष्ट रहने वाले हैं। अच्छा कोई तरक्की होती तो जैसे हम हमेशा ऐसा ही हमारी परिस्थिति रहेगी, हम उसमें नित्यता वाला अभिप्राय स्थापित कर देते हैं और चीज वैसी रहती नहीं, वो तो अनित्य है ही। अनित्य को हम नित्य मान करके चले तो भी अनित्य नित्य हो नहीं सकते, शरीर का संजोग है। जैसे मरने वाले नहीं ऐसे समझ करके ही हम प्रवृत्ति करते हैं, जो भी करते हैं संसार में जितने भी काम करते हैं उसमें मृत्यु को भूल जाते हैं कि हम मरने वाले है ही नहीं, और इसी तरह से हम काम को हाथ में लेते हैं। और बाद होता है कोई दूसरी चीज, तो ये जो शरीर छूटने की तैयारी होती है तो लगता है कि अरे धोखा हो गया हमारे साथ, हम तो ऐसे नहीं माने थे कि इतनी जल्दी मर जाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया। तो जैसे कोई धोखा देते हैं और उसके प्रति बहुत आकुलता हो जाती है, वैसे नित्यता जिसमें हमने अनित्य संयोग में नित्यता स्थापित की है उसमें अनित्यता का काल आता है, हमारी आकुलता बढ़ जाती है, हमारी दुख हमारा दुख बढ़ जाता है। तो दुख होने का कारण क्या हुआ, देखिए कि हमारा जो मिसकॉन्सेप्ट था अनित्यता में नित्यता हमने मान रखी थी, ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट था, वही हमारा दुख का कारण बना के नहीं बना। बस देख लो संसार में ये हालत है। ज्ञानी कहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता भासित हो, देखने में आए, भासित हो माने देखने में आए, विचारने में आए उतनी बात नहीं लिया इधर, देखने में आए, विजुलाइज होना कि अरे ये शरीर भी कुछ टाइम पर ही रहने वाला है, इस दूसरे संयोग भी कुछ समय तक ही मेरे साथ है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है ये, हम हमारे मकान में ठहरते हैं वो वास्तव में एक धर्मशाला है, एक होटल है, दूसरा कुछ नहीं है। ये जो परिवार है ये भी होटल के जैसे नौकर चाकर होते हैं, सेवा करने वाले ऐसे ही लोग हैं। है? प्रारब्ध योग से वहाँ नौकर मिलते हैं, ऐसे घर में दूसरे को हमारे परिवार वाले मिलते हैं जो अरस्त पर समय दूसरे की सेवा लेते हैं, सेवा करते हैं, वो भी सर्विस देते हैं, वो भी सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें परायापन है तो हमको कुछ नहीं होता है। जैसे होटल के नौकर को बुखार आएगा हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चे को बुखार आएगा तो हमको ऊपर नीचे हो जाएंगे हम। हाँ ये अपनत्व है, उसमें नित्यता स्थापित हो जाती है और ये हमारा दुख का कारण बनता है। वास्तविक परिस्थिति ऐसी है नहीं, और वास्तविक परिस्थिति को भूल करके हम कोई कल्पना बना लेते हैं तो जाली नोट कोई सच्ची नोट बन जाती नहीं है, फिर हमको दुख होता है। तो कहते हैं कि संसार अनित्य है, इसकी अनित्यता को देखो, उसकी असारता को देखो। असारता मैंने क्या है कि सार नहीं है इसमें। क्यों सार नहीं है कि बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन छोड़ के जाना पड़ता है, क्या सार निकाला, पूरा जीवन हार गए। हम सुबह बात चला था नरदेह ने हरी जो, ये बात हो गई। सार मैंने सुखरूप, असार मैंने दुखरूप। तो संसार में दुख के प्रसंग ही ज्यादा है, तनाव और टेंशन के प्रसंग ही ज्यादा है, आकुलता ही ज्यादा है। किसी को भी पूछो आप पूरे पूरे सुखे हैं क्या, ना देगा। नहीं भाई हमको तो वो उपाधि है, वो उपाधि है, वो बात है, वो बात है, वो बात है, ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है, वो है, वो है, कहीं न कहीं कहीं न कहीं आकुलता का कारण बनता रहता है। इसलिए सारा संसार असार है, अनित्य है, ऐसा विजुलाइज होना चाहिए, अत्यंत रूप से भाषित हो, इसके असर आ जाए, अत्यंत इसके असर उत्पन्न हो, उस प्रकार से आत्म शांति पाने का विचार उत्पन्न होना चाहिए। आत्मशांति का विचार कहाँ से उत्पन्न होगा? कि अगर संसार की अनित्यता और असारता दिखने में आएगी तब होगा, अगर वो दिखने में नहीं आएगी तो आत्मशांति का विचार कोई करने वाले नहीं है। हाँ, मैं कौन हूँ, मनुष्य रूप में क्यों पैदा हुआ, और मेरे अगल बगल में जिस प्रकार के संयोग वियोग बनता है वो किस कारण से बनता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका विचार कोई शांत चित्त से करता है तो उसको आत्मकल्याण और अकल्याण का बात, आत्म शांति और अशांति का विषय के विषय में विवेक आता है, सूझ आती है कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, इसकी एक सूझबूझ आ जाती है। ऐसा बहुपुण्य कीड़ा पुंज थी जो पद लिखा है उसमें एक पंक्ति ऐसी भी लिखी है, 17 साल पहले लिखा है वो बात उन्होंने, 16 साल की उम्र में वो बात लिखी है। तो कहते हैं कि आत्मकल्याण के आत्मशांति के विचार उत्पन्न होने का यही कारण है। हम बीच में एक बात बताना चाहते थे, हम जर्मनी में थे जून मास में, बर्लिन की फेरी लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ एक डॉक्टर 85 साल के बूढ़े जर्मन डॉक्टर ब्रोम करने मिले थे जो वहाँ के जैनोलॉजी के अच्छे प्रोफेसर थे। एक शास्त्र हमको चाहिए था तो इसके अलमारी में से निकला, पर्सनल अलमारी में से निकला, उन्होंने भी बहुत खोजा लाइब्रेरी में मिला नहीं, पर हमको चाहिए था और उसको मालूम था कि है तो सही, हमने देखा है लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। काफ़ी घंटा भर के परिश्रम के बाद अपनी अलमारी में से वो मिला। वो कुंद कुंद आचार्य देव की जो भक्ति का वो ले आए ना जेरोक्स निकाल करके, भक्ति अधिकार, भक्ति प्रावृत, भक्ति प्रावृत ले आए वो। तो इसके साथ थोड़ी चर्चा हुई, उनको कुछ 2-4 प्रश्न पूछे कि आत्मा क्या है, आत्मा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, आत्मा के विषय में आप क्या क्या। तो हम बोले कि हमने तो चिट्ठी लिखी थी आपकी यूनिवर्सिटी पे, वी कैन डिलीवर द लेक्चर्स ऑन सोल, ऑन प्योरिफिकेशन ऑफ सोल व्हाइल स्टेइंग इन जर्मनी, इफ इट इज अरेंज फॉर, ऐसा अरेंजमेंट होगा तो हम देंगे लेक्चर, ऐसा करके हमने लिखे थे। तो बोले कि यहाँ कोई मेरे को भी सुनने वाले नहीं है तो आपको तो कौन सुनेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज में इस संसार की अनित्यता का विचार ही नहीं आता है, उसकी असारता का विचार नहीं आता है। हमारे आचार्यों ने आत्मविचार उत्पन्न होने के लिए 12 भावना लिखी है, अनित्य भावना, ऐसे ऐसे 12 भावना लिखी है, और इस ग्रंथ में भी है, श्रीमद जी ने भी ली है। मैंने 12 पहलू से विचार किया है आत्मकल्याण का, आत्मशांति का विचार उत्पन्न कराने के लिए 12 प्रकार से बात किया है, और एक एक भावना के पूरे चैप्टर लिखे हैं कि अनित्य भावना में क्या क्या अनित्यता है, असारता में क्या क्या असारता है, ऐसे 12 भावना है। प्रसिद्ध है हमारे दिगंबर शास्त्रों में 12 भावना वाला बात तो प्रसिद्ध है। कुंदकुंदाचार्य ने भी 12 अणुवेखा ऐसा करके 12 भावना मागधी भाषा में 12 अणुवेखा ऐसा करके लिखा है, वो अपने ट्रस्ट में से प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है। बहुत से आचार्यों ने लिखे हैं कि संसार के प्रति जो रस है उसको निरस टालाने के लिए और मोह को कमजोर करने के लिए, दर्शन मोह को कमजोर करने के लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं और हमारे यहाँ ये भाई जाति है, इस भावना को भाई जाति है। अब अपनी व्यक्तिगत पर्सनल बात श्रीमद जी बता रहे हैं, क्योंकि खुद की 28 साल की उम्र है जब ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इस उम्र कितनी है? 28 साल की है। बिजनेस क्षेत्र में प्रवेश किया 8 साल हो गई है। 8 साल के कार्यवाही में बिजनेस में सफलता भी मिली है, लेकिन उसका रस नहीं चढ़ा है। विशेषता वो है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी पिताजी की। वो बिजनेस में लगे, पैसे कमाए। संसार में ऐसी परिस्थिति में कमाई होती है तो पैसे का रस भी बढ़ जाता है, नॉर्मली सबों को बढ़ता ही है। श्रीमद जी की बात अलग है, उनको निरस्ता आने लगी थी शुरू से। 2-3 साल में ही निरस्ता आने लगी। 20 साल की उम्र में वो ज्वाइन हुए थे बिजनेस में। 24 साल की उम्र में तो उन्होंने सम्यक दर्शन का और आत्म साक्षात्कार, आत्म शांति का अनुभव किया। कब निरस्ता आई? तब फिर वो निरस्ता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और 30 साल की उम्र में तो उन्होंने अपने पार्टनर से बोल दिया कि मैं अभी बिजनेस में रहने वाला नहीं हूँ। हमारे यहाँ 30 साल की उम्र में तो पुरजोश में चलते हैं लोग, वो रिटायर होने की तैयारी में थे। देखो क्या हालत हुई। अब ये चिट्ठी लिखते हैं वो 28 साल की उम्र में, देखो क्या लिखते हैं कि अब इस उपाधि कार्य से, बिजनेस के कार्य को क्या कहते थे वो, उपाधि कार्य कहते हैं, बहुत सी उपाधियां होती है ना इसमें, अब इस उपाधि कार्य से छूटने की विशेष विशेष आरती, आरती मैंने तीव्र इच्छा को कहते हैं, आरती अर्थ ध्यान की परिणति को आरती कहते हैं, तीव्र इच्छा हुआ करती है कि अब तो इनसे छूट जाना है, अब तो इससे छूट ही जाना है। 28 की साल की उम्र में उनकी जो भाव है वो बता रहे हैं, और छूटे बिना तीव्र इच्छा होती है फिर भी छूटा नहीं जाता, तो छूटे बिना जो कुछ भी काल बीतता है, जो भी समय बीतता है, वह इस जीव की, मैंने हमारे जीव की शिथिलता ही है ऐसा लगता है। खुद के विषय में लगता है कि मेरी शिथिलता है, मुझे इच्छा तो छूटने की है लेकिन मैं छूट नहीं सकता, ये मेरी शिथिलता है, अथवा ऐसा निश्चय रहता है कि मेरी शिथिलता ही है, वरना मैं क्यों नहीं छूट सकता। तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी अपनी शिथिलता को वो बताते हैं कि मेरी शिथिलता है, कभी भी ये कार्य चालू है मेरा। जनक आदि उपाधि में रहते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते थे। जनक राम महाराजा रामचंद्र जी के ससुर थे और सीता जी के पिताजी थे, महाज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। देखो ये जमाना देखो, मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर 20वें तीर्थंकर हमारे हुए, उसी के समकालीन है वो लोग। रामचंद्र जी भगवान मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर देव के समो शरण में सुनने को जाते थे, दिव्य ध्वनि उपदेश सुनने को जाते थे। हाँ ये हमारे रामायण में बात आए, वो समकालीन थे। वो ग्यारह लाख से ज्यादा समय बीत गया, 11 लाख से पहले की बात है, 11 लाख वर्ष से पहले की बात है। तो जनक उन जमाने में क्या था, सीता जी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, रामचंद्र जी भी महाज्ञानी थे, इनके ससुर भी महाज्ञानी थे। देखो एक घर में, एक एक परिवार में कितने ज्ञानी थे उस जमाने में। हाँ तो उपाधि में मैंने राजकाज तो करते थे, वो भी बड़े राजा थे, रामचंद्र जी के ससुर भी बड़े राजा थे। फिर उपाधि में रहते हुए राजकाज करते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते थे, भीतर में बहुत निरस्ता से राज के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे और आत्म स्वभाव में रहते थे, स्वरूप आत्म कार्य करते थे। ऐसा पुराण में आता है, फिर भी मैं ऐसे अवलंबन के प्रति कभी भी बुद्धि नहीं मुझे आती कि हम भी ऐसा करें, बिजनेस करते रहें और आत्म स्वभाव में रहते रहे, बिजनेस करते रहें और आत्म स्वभाव में रहें। क्योंकि गृहस्थ में आत्म स्वभाव में रहा जा सकता है, जनक राजा भी रहे थे तो हम भी रहेंगे, ऐसी बुद्धि, ऐसा अवलंबन लेने की बुद्धि नहीं होती। देखिए, एक ही मुद्दे को सरलता से लेना है। अगर कोई अवलंबन लेता है तो वो इस जीव की असरल मति है, बुद्धि असरल है। सरलता में क्या बात आती है कि हमें ऐसा अवलंबन नहीं लेना चाहिए, वो बात आत्मकल्याण की सरलता में जाती है। और कोई अवलंबन लेता है कि देखो भाई वो भी करते थे, वो भी राज चलाते थे, उनको भी रानियां थी, उनके भी पुत्र परिवार थे, हमको तो उतना परिग्रह है ही नहीं। राजा को जितना परिग्रह होता है उतना परिग्रह तो हमारे पास नहीं है, है? तो फिर हम भी आत्म स्वभाव में रहेंगे और ये सब करते रहेंगे, है? ऐसा आधार लेना, ये मति की असरलता है। तो कैसा आधार लेना चाहिए कि श्री जिनेन्द्र जैसे जन्म त्यागी भी छोड़कर चले चल निकले, ऐसे भय के हेतु रूप उपाधि योग की निवृत्ति, यह पामर जीव, मैं पामर जीव ऐसा लिखते हैं, यह पामर जीव करते करते काल व्यतीत करेगा, समय निकालेगा तो अश्रेय मैंने अकल्याण हो जाएगा, ऐसा भय जीव के उपयोग में सावधानी में ऐसा भय रहता है, क्योंकि यही कर्तव्य है। किसका आधार लिया? जिनेन्द्र परमात्मा का आधार लिया कि वो तो तीन ज्ञान तो लेकर के, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान लेकर के तो जन्म हुआ था उनका, तो वो तो जन्म से ही निरस्त थे ज्ञान के कारण से। हाँ, जन्म से ही निरस्त थे। तो उसको कहते हैं क्या है कि वो जन्म त्यागी थे, जन्म से त्यागी जैसे थे, रहते थे महल में, राजा के पुत्र थे ना तो महल में रहते थे, खान पीन भी वैसी ही थी लेकिन रस कहीं नहीं था, निरस थे, वैरागी थे, वो उदासीन थे। तो जन्म त्यागी जैसी उनकी अवस्था थी, कैसी दशा थी, जन्म त्यागी थी, फिर भी आगे जा करके उन्होंने त्याग कर दिया, निरस्ता इतनी बढ़ गई कि वो रह नहीं सके, दीक्षा अंगीकार कर लिया, जंगल में चले गए और आत्म साधना करते करते केवल ज्ञान को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब ये वो सब जिनेन्द्र सिद्धालय में विराजमान है। तो इसका आलंबन, इसका आधार मैं तो लूंगा, मैं जनक राजा का आधार नहीं लूंगा, ऐसा कहते हैं। अगर मुझे आधार लेना है तो जिनेन्द्र परमात्मा का लेना है। देखो, जन्म त्यागे होने के बावजूद भी उन्होंने बाहर में राजकाज में वो रहनी छोड़ दिया और चल निकले, क्यों कि भय के हेतु रूप उपाधि योग है, ये उपाधि का जो प्रसंग है वो परिभ्रमण का कारण रूप बनता है। अगर हम रस लेते हैं तो कहीं रस नहीं पड़ जाए, अभी निरसता है तो छोड़ के निकल जाए, वरना रस पड़ गया बात बदल जाएगी पूरी की पूरी। तो ऐसे भय के, भय जीव के उपयोग में रहता है और हम समय निकालेंगे, हमको समय व्यतीत नहीं करना होगा, जल्दी से जल्दी निवृत्त हो जाना चाहिए। तो क्या है कि इस चिट्ठी के बाद वो 2 साल में 30 साल की उम्र में अपने पार्टनर्स को बोल दिया, मैं तो मेरा गद्दी पे आना जाना बिजनेस करना कोई व्यवस्थित हो ही नहीं पाएगा, मेरे परिणाम चलते नहीं, आपको व्यवस्था बिठा लो, मेरा आना जाना बहुत कम हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा समझ लेना। और हमारी पार्टनरशिप भी निकाल दो, हमारे पाते में जो भी प्रॉफिट आया है आता है सब हमारे छोटे भाई के खाते में जमा कर दो, हमारा खाता को स्क्वाड अप कर दो, नील कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके वो बिजनेस छोड़ दिया था। 30-32 साल की उम्र में तो पूरे पूरे वो निवृत्त हो गए थे, 30-32 साल में तो जोश से काम करते हैं, वो निवृत्त हो गए थे। किसके आधार से कि देखो जिनेंद्र परमात्मा ने कैसा किया, हमको ऐसा ही करना है, हमको जनक राजा का आधार नहीं लेना है, हमको तो सर्वज्ञ का आधार लेना है, ऐसा करके कि हम अगर काल व्यतीत करेंगे तो अश्रेय अश्रेय श्रेय मैंने कल्याण अश्रेय मैंने अकल्याण होएगा, ऐसा भय हमारे उपयोग मैंने सावधानी में रहता है और ऐसी सावधानी ही कर्तव्य है, ऐसी सावधानी होनी चाहिए, अगर हम बेसावधान रहे तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो भी जागृत है, ज्ञान दशा में भी उतनी जागृति विशेष रहती है, ये दिखाने का यहाँ अभिप्राय है। तो यहाँ तक मैं अपना समय समाप्त हुआ है, आगे का विषय कल के स्वाध्याय में लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में तब ये पत्र व्यवहार चला है, उसका उत्तर दिया है, गांधी जी को उत्तर दिया है मुंबई से।